ಶರಣಿಯ ವೇಯಣ ಊಹಿಸಮುತ್ತಿಣ್ಣಿಣೇಣ ಮಿಂ ವೇಯಣ ಮಹಾಹಿಯಾರಂ ವಿವಿಹಿಯಾರಂ ಪರೂವೇಮೋ. ಯ ಶ್ರೀ ವೀರಸೇನ ಆಚಾರ್ಯ ರಚಿತ ಧೌಲಾ ಟೀಕಾ ಹೈ ಜೊ ಷಟ್ಖಂಡಾಗಮ ಗ್ರಂಥ ಪರ್ ಲಕಿ ಹುಯಿ ಹೈ ಜಿಸ್ಕೆ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಪುಷ್ಪದಂತ ಔರ್ ಭೂತಬಲಿ ಆಚಾರ್ಯ जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है और जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है. अब ये जो चतुर्थ वेदना खंड है उसमें वेदना अनुयोग द्वार की बात अभी चल रही है. अभी हम पृष्ठ 63 पर आ गए हैं. देखिए अपना ये विषय चल रहा है योग स्थान संबंधी. वेदना अनुयोग द्वार में तो हमने देखा था वेदना नहीं, यहाँ कर्मों की बात चल रही है. देखो यहाँ ये हमने देखा था दूसरे पृष्ठ पर हाँ 63 पेज पर आए 61 पर हाँ हाँ वो देखना है. प्रमाण हमने आगे विशेषार्थ पढ़ा था तो विशेषार्थ के पहले फिर हम वहाँ जाएंगे तो उसके पहले ये योग स्थान क्या होता है उसको पहले हम दोबारा देखते हैं. देखिए योग जो है वो तीन प्रकार के होते हैं. योग स्थान जो है तीन प्रकार के हैं. उसमें उपपाद योग स्थान, एकांत अनुरुद्धि योग स्थान और परिणाम योग स्थान ऐसे अलग अलग प्रकार का है. उपपाद है वो पर्याय धारण करने का पहला समय. पर्याय धारण करने का यानी विग्रह गति से आकर जहाँ शरीर ग्रहण करने का जो पहला समय है तब जो होता है वो उपपाद योग स्थान. उसके बाद शरीर पर्याप्ति पूरी होने के एक समय पहले तक वो जो योग है वो एकांत वृद्धि 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 होते चला जाता है. एकांत अनुबुद्धि या एकांत बुद्धि योग. उसके बाद शरीर पर्याप्ति पूर्णी होने के समय से लेकर आयु के अंत तक परिणाम योग स्थान पाया जाता है. उसमें वृद्धि भी होती है हानि भी होती है कभी अवस्थित भी होती है. उपपाद योग स्थान एक ही समय वाला है. एकांत अनुबुद्धि हर समय बढ़ते ही बढ़ते चला जाता है परंतु परिणाम योग स्थान है वो हो सकता है कि दो समय तक उतना ही योग रहे और बाद में चेंज हो जाए. तीन समय तक उतना ही रहे या चार समय तक या पाँच समय तक ऐसे अधिक से अधिक आठ समय तक उतना ही रह सकता है बाद में उसमें वृद्धि आने. तो कितने काल तक वो उतना ही रहता है उसकी अपेक्षा से काल की अपेक्षा से ये जो योग स्थान है कौन से परिणाम योग है आठ समय तक रहने वाला जो या छः समय सात समय तक छः समय तक तो उसकी कैसे काल या वो मध्य रचना करते हैं ये हमने पढ़ा था पहले. यानी आठ काल तक कंटिन्यूस रहने वाले आठ समय तक कंटिन्यूस रहने वाले सात समय तक कंटिन्यूस रहने वाले उनकी कितनी कितनी संख्या है उसकी हमने बात देखी. अब दूसरी एक बात आती है कि जीव जीव योग एक तो ये काल की अपेक्षा से यवोमध्य रचना है कि अब जीव यवोमध्य रचना भी कहते जीव यवोमध्य रचना में त्रस पर्याप्त जो जीव है त्रस पर्याप्त त्रस पर्याप्त जो जीव है एक इंद्रियों को छोड़ना यहाँ से और अपर्याप्तों को भी छोड़ना है. त्रस पर्याप्त जीवों में यानी द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय संगी तक पर्याप्तों में ये जो योग स्थान है तो उनमें जीवों की संख्या कितनी कितनी होती है इसकी अपेक्षा अगर हम कथन देखते हैं तो ऐसे बीच वाले कुछ स्थान ऐसे हैं कि जहाँ जीवों की संख्या मैक्सिमम है बीच वाले योग स्थान और फिर नीचे की ओर या ऊपर की ओर चले जाएंगे तो जीवों की संख्या कम होती चली जाती जीवों का प्रमाण उसको कहते हैं जीव यव मध्य स्थान यव मध्य रचना. जीव यव मध्य रचना जो है तो ये जीव यव मध्य रचना को हम देखते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ आए ये बात हमने कर्मकांड में से पढ़ी थी लास्ट टाइम। ये जो विशेषार्थ है ना उसमें 62 पृष्ठ पर जो विशेषार्थ है उसको हमने पढ़ा था, अभी हम दोबारा पढ़ेंगे बाद में। विशेषार्थ में ये सब बातें फिर दोबारा आएगी। तो उसमें बीच वाले जो ऐसे कोई योग स्थान है उसमें जीवों की संख्या ज्यादा होती है। फिर दोनों ओर अगर हम जाते हैं योग स्थानों की अपेक्षा, योग स्थान है क्या, तो पहले में पहले जघन्य योग स्थान से हम शुरू करते हैं। तो उसमें जिसमें जघन्य में जघन्य योग है वहाँ से लेकर अधिक अधिक वृद्धि वाले जो अलग अलग जो वेरिएशंस है उसको योग स्थान कहते हैं। तो ऐसे जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक असंख्यात लोक प्रमाण जो कुछ योग स्थान जो है, तो उसमें से ये जो हम विशिष्ट योग स्थानों में जीवों की संख्या ज़्यादा है और नीचे की ओर ऊपर की ओर जाते हैं तो जीवों की संख्या कम होती है। तो उसमें वो गुणहानि वगैरह बताए थे, निषेक की रचना गुणहानि वगैरह सब यहाँ पर घटित किया। जैसे हम कर्मों में घटित करते हैं ना, वैसे यहाँ जीव के प्रदेशों में या जीवों में कितने जीवों में कितना योग है उसकी अपेक्षा ये रचना बताते हैं। तो उसको कहते हैं दोनों ओर जीवों की संख्या कम होती है, उसी को जब आधी होती है तो उसको गुणहानि कहते हैं। तो ये बात फिर दोबारा पढ़ेंगे, अभी हम 61 पेज से शुरू करते हैं। देखो अब यहाँ ऊपर से तीसरी लाइन से शुरू करेंगे। अब जीव यव मध्य के पिछले स्थान से आगे का स्थान विशेष अधिक है, इस बात का कथन करने के लिए। ये जीव यव मध्य की बात समझ में है, पहले हमने देखी थी काल यव मध्य रचना, लगातार कितने काल तक उसी योग में जीव रहता है उसको कहते हैं काल यव मध्य। उसमें बीच वाला 8 समयों वाला काल बीच में रखा था और दोनों ओर यानी 7 समय वाला 6 समय वाला इस तरह से हमने देखा था। अब यहाँ कहते हैं जीव यव मध्य। जीव यव मध्य में हमने क्या देखा, त्रस पर्याप्त जीवों के योग स्थान, कौन से योग स्थान, तो परिणाम योग स्थान, उसके हम एक कतार में उनको रखेंगे। तो जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक अनेक वहाँ योग स्थान हैं, उसमें से कौन से योग स्थानों में मैक्सिमम जीव है उसको सेंटर में रखेंगे और फिर दोनों ओर रचना दिखाएंगे। तो इसको कहते हैं जीव यव मध्य के पिछले स्थान से आगे का स्थान विशेष अधिक है, इस बात का कथन करने के लिए प्ररूपण प्रमाण श्रेणी अवहार भागाभाग और अल्प बहुत्व इन 6 अनुयोग द्वारों की योग स्थानों में स्थित जीवों को आधार करके प्ररूपणा करते हैं। अब यहाँ जीव आधार क्या है, जीवों की संख्या। पहले हमने जो आधार देखा था तो कंटिन्यूअस उसी योग में रहने वाला काल देखा था, वहाँ काल को आधार किया था, अब यहाँ जीवों को आधार करते हैं। वह इस प्रकार है, प्ररूप नैने अभी है ऐसा कथन करेंगे पहले में पहले। तो जघन्य योग स्थान में जीव है इस प्रकार, उत्कृष्ट योग स्थान के प्राप्त होने तक सब योग स्थानों में जीव है ऐसा सर्वत्र कथन करना चाहिए। प्ररूपणा समाप्त हुई। प्ररूपणा कितनी हुई कि जघन्य स्थान में जीव है, फिर उसमें दूसरे स्थान में जीव है, तीसरे स्थान में जीव है, चौथे स्थान में जीव है, ऐसे उत्कृष्ट योग स्थान में जीव है, बस इतनी प्ररूपणा है, मैंने कथन कर दिया उन्होंने। अब दूसरा जो प्रमाण वाला जो भाग है किसमें कितने जीव है उसको प्रमाण कहेंगे ना, उसकी बात अभी बता रहे हैं। तो जघन्य योग स्थान में असंख्यात जीव है। जघन्य योग स्थान हमने वो त्रस पर्याप्त की बात वहां से शुरू की, उनका प्रमाण असंख्यात जगत श्रेणियां हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट योग स्थान के प्राप्त होने तक सर्वत्र जीवों की संख्या कहनी चाहिए। सभी को हम असंख्यात ही कहेंगे परंतु उसमें भी कुछ वेरिएशन होगा, तो उसका प्रमाण बता रहे हैं। शंकाकार पूछता है, जघन्य योग स्थान में असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जीव है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? इस शंका का उत्तर कहते हैं, प्रत्रांगुल के संख्यात विभाग का प्रत्रांगुल किसको कहते मालूम है? अंगुल गुना अंगुल। अब ये सब पुरानी टर्मिनोलॉजी थोड़ी देखनी पड़ी। तो प्रत्रांगुल के संख्यात विभाग का जगत प्रतर में भाग देने पर, जगत प्रतर ने जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी, उसको कहते जगत प्रतर, उसमें भाग देने पर सब योग स्थानों में स्थित त्रस पर्याप्त जीवों का प्रमाण होता है, यानी सभी त्रस पर्याप्त जीवों की संख्या यहाँ आती है। इसमें समस्त योग स्थान अध्वान के असंख्यातवे भाग प्रमाण तीन जीव गुणहानियों के काल का भाग देने पर असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण यवमध्य के जीव आते हैं। सेंटर में कितने जीव आते हैं उसकी बात यहाँ चल रही है। देखिए, हमने पहले कर्मकांड में देखा था तो सेंटर में हमने 128 देखे थे, टोटल जीव कुछ 4000 कुछ हमने माने थे, वहाँ यहाँ लिखी कि संख्या 1422 मान लेते हैं, 1422 मान लेंगे तो उसके आधार से उन्होंने गणित किया था, वो विशेष अर्थ में फिर बताएंगे अभी। अब तो वैसे यहाँ सेंटर में कितने जीव है तो कहते हैं असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। देखो ये पहली लाइन 62 पेज पर, 62 पेज पर पहली लाइन फिर पढ़ते हैं। तो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण यवमध्य के जीव आते हैं, क्योंकि सब जीवों को यवमध्य में स्थित जीवों के प्रमाण से करने पर का अर्थ होता है जितना यवमध्य में जीव है उसके प्रोपोर्शन में अन्य जीवों को अगर हम देखेंगे तो तीन गुणहानियों का जितना काल है उतने यवमध्य प्राप्त होते हैं। ये गुणहानि के सेंटर में जीव ज़्यादा है और दोनों ओर वो टेपरिंग हो जाएंगे, तो जहाँ आधा होता है जीवों की संख्या वहाँ कहेंगे एक गुणहानि, नीचे की ओर भी आधे आधे हो गए और ऊपर की ओर भी, यानी दोनों ओर टेपरिंग होगी ना। यवमध्य यानी बीच में ज़्यादा है और दोनों ओर कम होते चले जाते हैं, नीचे की ओर यानी द्विंद्रिय की तरफ, बीच का कोई पॉइंट लिया है हमने, और ऊपर की तरफ यानी संगी पंचेंद्रिय की तरफ, तो दोनों ओर जीवों की संख्या कम होती है तो उसको कहते हैं गुणहानि। तो ये गुणहानि का आयाम यानी उसकी लंबाई कितनी है उसका प्रमाण प्राप्त हो जाएगा। ये बाद में फिर विशेषार्थ में जब हम छोटे अंक लेकर देखेंगे तो और क्लियर होगा। पिछली गुणहानि शलाकाओं का विरलन कर, ये दोनों ओर गुणहानि है ना, नीचे की ओर, आगे की ओर भी, पीछे की ओर भी, तो इसको पीछे कहते हैं, नीचे की ओर भी और ऊपर की ओर भी। तो पिछली नाना गुणहानि शलाओं का विरलन कर, नाना गुणहानि शला का किसे कहते हैं याद है ना? हाँ, नंबर ऑफ गुणहानि को कहते हैं नाना गुणहानि, और उनकी जो संख्या है उसको कहते हैं नाना गुणहानि शला का। तो नाना गुणहानि शलाओं का विरलन कर द्विगुणित करने पर अन्योन्य अभ्यस्त राशि होती है। ये पहले हमने जब जब बातें देखी थी ये सारी कोई भी जो हम ये गणित करते थे ना उसमें दो तीन शब्द आते थे, एक तो सर्वद्रव्य, हाँ, फिर गुणहानि आयाम, निषेक, क्षय, गुणहानि होती है उसकी लंबाई कितनी है, दो गुणहानि क्या है, डेढ़ गुणहानि क्या है, और उसका प्रमाण कैसा निकालना, तो वही बातें यहाँ आएगी। जो कर्म के बारे में हमने सीखे थे वही यहाँ पर योग में भी लागू होगा। देखो ये वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक आदि बातें यहाँ भी लिखेंगे। कर्म, परमाणु को हमने वर्ग कहा था, क्योंकि उसमें विशिष्ट अविभाग प्रतिच्छेद पाया जाता है। अब यहाँ वर्ग कहेंगे जीव के एक एक प्रदेश को, क्योंकि उसमें योग की शक्ति है। तो जीव के प्रदेश को वर्ग कहेंगे और उसमें जो योग की शक्ति है उसको कहेंगे अविभाग प्रतिच्छेद उसके। तो उसमें जितने वृद्धि होती है ना, एक से दूसरी जो मिनिमम योग है और उससे थोड़ा ज़्यादा योग है, तो जितना मिनिमम वो डिफरेंस है जिसको वृद्धि कहते हैं, उसी को एक अविभाग प्रतिच्छेद कहेंगे। तो उसकी अपेक्षा से यहाँ कितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं योग के, तो उसके असंख्यात में भाग आते हैं। कर्मों में हम हमेशा अनंत में देखते थे, उसके अनंत गुणा वगैरह होते थे, तो यहाँ तो असंख्यात में सारा होता है। योग जो है वो असंख्यात में आता है, असंख्यात जगत श्रेणी ऐसी उसमें बात आएगी। तो यहाँ कहते कि वर्ग कहना जीव के प्रदेश को, जिन जिन प्रदेशों में समान योग होगा उसको कहेंगे वर्गणा, जिन जिन जीव प्रदेशों में मिनिमम योग है उसको कहेंगे जघन्य वर्गणा, उसमें थोड़ा अधिक योग वाले जो सभी प्रदेश है उनकी संख्या उसके जो समूह है उसको कहेंगे दूसरी वर्गणा, तीसरी वर्गणा, चौथी वर्गणा। जब पहली वर्गणा से दुगुना हो जाता है ना, पहली वर्गणा में जो वर्ग है उसमें जितना अविभाग प्रतिच्छेद है वो जब दुगुना हो जाता है, तब वहाँ तक के नीचे के वो कहेंगे एक स्पर्धक, फिर दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक, चौथा स्पर्धक, उसमें अविभाग प्रतिच्छेद दो गुना, तीन गुना, चौगुना हो जाएगा। तो ऐसे कहाँ तक स्पर्धक लेना, तो हम पहले कर्मों में जैसे देखा वैसे यहाँ पर भी देखना कि ये जो है नंबर ऑफ प्रदेश, ज़्यादा नंबर ऑफ प्रदेश, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रदेशों में जघन्य योग है, उसमें कम नंबर ऑफ प्रदेशों में उससे योग ज़्यादा है और योग ज़्यादा है, ऊपर ऊपर योग ज़्यादा है परंतु नंबर ऑफ प्रदेश कम होते चले जाते हैं। तो जहाँ नंबर ऑफ प्रदेश आधे होते हैं तो हम कहेंगे गुणहानि हुई। तो एक गुणहानि में अनेक स्पर्धक है और एक एक स्पर्धक में अनेक वर्गणा है और एक एक वर्गणा में अनेक वर्ग है, असंख्यात में, असंख्यात ही है, तो जगत श्रेणी का असंख्यात अभाव ऐसा है, यानी एक गुणहानि में असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण तो स्पर्धक है, एक एक स्पर्धक में असंख्यात जगत श्रेणी वर्गणाएं हैं और एक एक वर्गणा में, अभी नीचे की जो वर्गणा है उसमें असंख्यात जगत प्रतर इतने वर्ग यानी प्रदेश है। पूरे आत्मा के प्रदेश कितने हैं, लोक प्रमाण यानी एक लोक जितने हैं, परंतु जगत प्रतर को जगत श्रेणी से गुणा करेंगे तो लोक आएगा, परंतु दूसरे किसी असंख्यात से गुणा करेंगे तो इतने प्रदेश पहली वर्गणा में है और ऊपर ऊपर वर्गणा में जो वर्ग है उसकी संख्या कम होती है। हम कहेंगे एक गुणहानि, फिर दूसरी गुणहानि, तीसरी गुणहानि, ऐसे जितने हैं सारे उसको कहेंगे नाना गुणहानि। ये तो जनरल बात हुई, योग स्थान में क्या होता है उसकी बात है, ये सब मिलकर एक योग स्थान हुआ। तो एक एक योग स्थान में क्या है, नाना गुणहानि है, एक एक गुणहानि में अनेक स्पर्धक है असंख्यात, एक एक स्पर्धक में असंख्यात वर्गणाएं हैं और एक एक वर्गणा में असंख्यात वर्ग है। ये तो जनरल बात हुई योग, एक योग स्थान की। अब यहाँ हम देख रहे हैं अलग अलग योग स्थान, जघन्य योग स्थान से उत्कृष्ट योग स्थान तक अनेक अलग अलग योग स्थान है। तो बीच में ऐसे कितने ही योग स्थान है जिसमें नंबर ऑफ जीव मैक्सिमम है, ज्यादा जीव है, जीवों की संख्या वहां उसमें ज्यादा है। अब नीचे की ओर या आगे की ओर चले जाओ तो जीवों की संख्या कम होती है उन योग स्थानों में। तो जितने योग स्थानों में ये मैक्सिमम जीव है उसको सेंटर में रखेंगे और दोनों ओर वो उसकी गुणहानि और नहीं बनाएंगे, उसको कहते हैं जीव यवमध्य रचना, उसको अभी हम पढ़ रहे हैं। त्रस्त पर्याप्त जीवों में, देखो क्या होता है, अपर्याप्त जीवों में क्या बात होती है, अपर्याप्त जीवों में, देखो अपर्याप्त जीवों में भी तीन प्रकार के योग स्थान हो गए कि नहीं हो गए? नहीं, उनमें भी तीन प्रकार के होते हैं। क्या होता है, देखो इनकी तो शरीर पर्याप्ति पूरी होने ही वाली नहीं है। शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर हम परिणाम योग स्थान कहते हैं, परंतु अपर्याप्त जीवों में क्या है, उनका तो आयु का स्पैन ही श्वास का 18वां भाग है ना। तो पहले समय में तो उपपाद योग स्थान है, अब जितनी उनकी आयु है उसके 2/3 करना, तो वहां तक एकांत वृद्धि और बाद में परिणाम योग स्थान होता है। वहां उनके आयु का बंध भी वो 2/3 में हो जाता है ना, वो पर्याप्त जीवों का भी, तो उनमें भी होते हैं, परंतु यहाँ उनकी बात नहीं है, यहाँ तो पर्याप्त जीवों के योग स्थानों की बात चल रही
है।
यहाँ एक इंद्रियों की बात नहीं ली, त्रसों की ही ली है। एक इंद्रियों में भी होते हैं योग स्थान, सब टोटल योग स्थानों की चर्चा में एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक और उपपाद से लेकर सभी योग स्थान उसमें आ जाएंगे, परंतु यहाँ जो हम जीव यौ मध्य रचना देखते हैं उसमें त्रस पर्याप्तों की बात है। अब ये जो यहाँ जो बात बता रही ना जीव यौ मध्य, उसमें सेंटर में ज्यादा है, नीचे और ऊपर वाले कम है। तो यहाँ देखो तीसरी लाइन से फिर पढ़ते हैं, पिछली नाना गुणहानी शलाओं का विरलन कर। अब दोनों ओर गुणहानी बनेगी, बीच में मैक्सिमम है, दोनों ओर टेपरिंग है, तो दोनों ओर गुणहानी बनेगी। तो यहाँ कितनी गुणहानी है और वहाँ कितनी गुणहानी है, नीचे कितने ऊपर कितनी है, तो उसका अलग अलग यहाँ प्रमाण बता रहे हैं। तो विरलन कर द्विगुणित करने का अर्थ क्या है, मान लेते तीन गुणहानी है, तो विरलन करना है ने एक 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 ऐसे तीन बार लिखना, और द्विगुणित करने ने उसमें दो दो लिखना और आपस में गुणा करना, तो उसकी संख्या 8 आ जाएगी, दो गुना दो गुना दो, उसको कहते हैं अन्योन्य अभ्यस्त राशि। नाना गुणहानि का प्रमाण उसको विरलन करके दो दो संख्या लिख कर आपस में गुणा करते हैं तो अन्योन्य अभ्यस्त राशि आती है। इससे तीन गुणहानियों को गुणित करने पर योग स्थान काल असंख्यात गुणा होकर भी जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग होता है, उसका त्रस पर्याप्त राशि में भाग देने पर असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जघन्य योग स्थान स्थित जीव आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगत प्रतर का भागहार जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग पाया जाता है। ये पहले जघन्य योग स्थान में इतने जीव क्यों है उसका ये समाधान कर रहे हैं। अभी हम विशेषार्थ पढ़ेंगे और छोटी संख्या लेंगे तो इसको और क्लियर होगा। इस प्रकार इस उपदेश से उत्कृष्ट योग स्थान के जीव भी असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण होते ऐसा सिद्ध कर लेना चाहिए। जैसे जघन्य योग स्थान में असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जीव है, वैसे उत्कृष्ट योग स्थान में भी असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जीव होते हैं। इस प्रकार जघन्य व उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों की संख्या असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण सिद्ध हो जाने पर सब योग स्थानों के जीवों की संख्या असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण सिद्ध ही है, क्योंकि उक्त दो स्थानों के जीवों की संख्या की अपेक्षा इतर योग स्थानों के जीवों की संख्या बहुत पाई जाती है। आओ भाई देखो, हमारे यहाँ योग स्थानों की चर्चा चल रही है। रजनी भाई आए हैं वॉशिंगटन से, कल रात को ही आए, 2 बजे बे वागे रात्रे आवी गया अने हमने अहीं पहुंची गया। गुड, यहाँ योग स्थानों की चर्चा चल रही है जीवों में जो योग शक्ति पाई जाती है उसकी अपेक्षा से यहाँ योगों की चर्चा चल रही है। तो उसमें थोड़ा हम रिपीट करते हैं कि जो जीव में योग पाए जाते हैं तो उसमें तीन प्रकार के योग अलग अलग पाए जाते हैं। योग का अर्थ हमने देखा था ना पहले, कि कर्म को आकर्षण करने की शक्ति कहो या शरीर के परमाणुओं को आकर्षित करने की जो शक्ति उसको योग कहते हैं। और वो योग होता है पुराने जो शरीर नाम कर्म के उदय में जीव में ये योग की शक्ति पाई जाती है। जीव के तो असंख्यात प्रदेश है, जितने लोकाकाश में प्रदेश है उतने ही एक एक जीव में प्रदेश होते हैं, और प्रत्येक प्रदेश में अलग अलग योग होता है। फिर भी जो मैक्सिमम योग होगा जिन प्रदेशों में उतना योग पाया जाता है ऐसा हम कहते हैं। तो ये योग भी अलग अलग जो स्टेजेस है जीव के डेवलपमेंट के उसमें अलग अलग पाया जाता है। मरकर अन्य पर्याय में जाता है तो शरीर ग्रहण करने के पहले समय में जो योग होता है उसको कहते हैं उपपाद योग। पर्याप्ति जो है ना, छह पर्याप्ति, उसमें दूसरी शरीर पर्याप्ति पूरी होने के समय के एक समय पहले तक जो होता है उसको कहते हैं एकांत अनुवृद्धि योग, क्योंकि वो उपपाद योग के बाद वो वृद्धि 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 सतत वृद्धि वाला योग होता है। उसके बाद यानी शरीर पर्याप्ति के समय से लेकर आयु के अंत तक उसको कहते हैं परिणाम योग स्थान। उसमें वेरिएशन होते हैं, कभी बढ़ता है कभी कम होता है और कभी उतना ही रहता है। तो उस अपेक्षा से योग स्थानों की चर्चा यहाँ चल रही है। उसमें भी अभी यहाँ जो बात चल रही है कि एकेंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रियों तक के योग स्थान देखेंगे तो एकेंद्रियों में तो जघन्य योग है और बढ़ते 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 संगी पंचेंद्रियों में तो उत्कृष्ट योग पाया जाता है। अभी उसमें हम त्रस पर्याप्तों की ही बात यहाँ ले रहे हैं, यानी द्विंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक के जो पर्याप्त जीव है उनकी बात चल रही है यहाँ पर। तो उसके अगर हम देखेंगे जघन्य योग, फिर थोड़ा अधिक योग, अधिक योग, अधिक योग, अधिक योग, ये जो अलग अलग जो वेरिएशंस है उसको कहते हैं स्थान। तो इन स्थानों में कहाँ कितने जीव होते हैं तो मेजॉरिटी जीव ये जो बीच वाले स्थान है उसमें मैक्सिमम नंबर होते हैं और दोनों ओर कम होते हैं। तो इसको अभी काल्पनिक संख्या लेकर अभी यहाँ विशेषार्थ में समझाएंगे। ये पेज नंबर 62 पर जो विशेषार्थ दिया है उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ त्रस पर्याप्त संबंधी कुल योग स्थानों में जितनी टोटल योग स्थान है ना, वेरिएशंस, अलग अलग जो अलग अलग योग पाए जाते हैं उसकी बात है। कुल योग स्थानों में अलग अलग और मिलकर कितने जीव है, यानी इनमें टोटल जीव कितने हैं, तो ये त्रस पर्याप्त जितने जीव है उतने टोटल मिलकर जीव है। अलग अलग यानी कहाँ कितने मेजॉरिटी है, कहाँ कितने जीव है, उसको कहेंगे अलग अलग। यह बतलाते हुए सर्वप्रथम जघन्य आदि प्रत्येक योग स्थान के जीवों की संख्या की सिद्धि की गई है। सिद्धि की गई है नहीं, जघन्य योग स्थान में जीव है, उसके आगे वाला जो अधिक योग है योग स्थान उसमें भी जीव है, उसमें भी जीव है, उसमें भी जीव है, इस तरह जीवों की सिद्धि की है। उसको हमने प्ररूपणा में अभी अभी देखा था। अब यहाँ प्रमाण की बात चल रही है और उस पर से त्रस पर्याप्त संबंधी सब योग स्थानों के जीवों की संख्या फलित की गई है, यानी त्रस पर्याप्त जीवों के जो योग स्थान है उन सब में मिलकर जीवों की संख्या कितनी वो भी सिद्ध किया है। आवली के संख्यात्व भाग का प्रतरांगुल में भाग देने पर जो लब्ध आवे उसका जगत प्रतर में भाग देने से त्रस पर्याप्त राशि प्राप्त होती है, ऐसा नियम है। देखो आवली आवली यानी कितने समय मालूम है ना, जघन्य युक्ता संख्यात इतने समय। आवली के लिए हम दो संख्या लिखते हैं और आवली का संख्यात्व भाग ये संख्यात की ऐसी चिन्ह है, तो आवली के संख्यात्व का भाग का प्रत्यंगुल में भाग देने पर, प्रत्यंगुल के लिए आवली है और अंगुल को भी दो ही संख्या लिखते हैं और प्रत्यंगुल को भी चार लिखते हैं, तो चार डिवाइडेड बाय हमने संख्यात किया था पहले, शॉर्ट में हमने ऐसा लिखा था। जगत प्रतर में भाग देना, ये जगत प्रतर की संख्या साइन ऐसी है। जगत प्रतर का अर्थ होता है सात राजू गुना सात राजू। देखो जगत श्रेणी यानी सात राजू, जगत प्रतर यानी 49 स्क्वायर राजू और लोक यानी 343 घन राजू, क्यूबिक राजू।
आवली का संख्यात्व भाग यानी दो,
ये यहाँ इस तरह से करना पड़ेगा। आवली के संख्यात से भाग से प्रतरांगुल को भाग देने पर जो संख्या आएगी उससे जगत प्रतर को भाग देना। अब ये तो कुछ ख्याल में रखने जैसी बात नहीं है, ये रहेगी भी नहीं, इतने कितने त्रस पर्याप्त जीव है उसकी बात चल रही है। फिर भी यह राशि जगत श्रेणियों की अपेक्षा कितनी जगत श्रेणी प्रमाण है यह देखना है। देखिए
असंख्या
जगत श्रेणी है। देखो ये जो जगत प्रतर है, जगत प्रतर कैसा आया, जगत श्रेणी मल्टीप्लाइड बाय जगत श्रेणी। जगत श्रेणी के लिए एक आड़ी लाइन लिखते हैं और जगत प्रतर के लिए दो आड़ी लाइन लिखते हैं, एक लोक के लिए तीन आड़ी लाइन लिखते हैं। ये तो साइन लैंग्वेज है, सिंबॉलिक गणित है सारा। जिग्नेश भाई आपको सीखना चाहिए यंगस्टर्स को। देखो अपनी भाषा में हम ऐसा लिखेंगे, ये सात राजू गुना सात राजू 49 हो गया ना, 49 स्क्वायर राजू, उसको हमने यहाँ जगत प्रतर कहा। तो 7 × 7 49 हो गए। अब ये 49 कितने, सात को सात से गुणा करने पर आया है, परंतु सात को तीन से गुणा करेंगे तो ये संख्या इससे छोटी होगी। ऐसे यहाँ बताने हैं कि ये जगत श्रेणी को दूसरे किसी असंख्या से गुणा किया है। जगत श्रेणी को जगत श्रेणी वाले असंख्या से गुणा करेंगे तो जगत प्रतर आता, परंतु असंख्या जगत श्रेणी इतनी वो वहाँ कोई संख्या है वो छोटी है जगत प्रतर से, इतना ही सिद्ध करना है। हम दूसरी काल्पनिक संख्या लेंगे तो ये क्लियर होगा। देखो ये अंतिम लाइन, ऐसा मोटा नियम है कि समस्त त्रस पर्याप्त राशि में तीन जीव गुणहानियों के आयाम का भाग देने पर, वो काल लिखनवा आयाम का भाग देने पर यव मध्य के जीव आते हैं। अब ये तो समझ में नहीं आएगा, आगे समझाएंगे संख्या लेकर तब समझ में आएगा। उदाहरणार्थ अंक संदृष्टि की अपेक्षा तीन जीव गुणहानियों का काल 12 है और त्रस पर्याप्त राशि का प्रमाण 1422 है। अब ये काल्पनिक संख्या लेकर हमें समझा रहे हैं कि त्रस पर्याप्त जीव जो हमने जगत प्रतर को अमुक अमुक से भाग दिया था इतने थे, उसके बदले में अभी उन्होंने 1422 संख्या बता दी। ये सारे काल्पनिक फिगर्स हैं, गणित समझ में आवे इसलिए बताएं। तो हमने अभी जो देखे थे कि जो सेंटर के जो जीव है तो ज्यादा है, अभी 1422 है, उसमें से जघन्य से लेकर उत्कृष्ट योगस्थान तक कितने कितने जीव है, तो बीच वाले कितने ही योगस्थानों में मैक्सिमम मेजॉरिटी है, तो वहाँ 128 लिखेंगे और दोनों ओर जीवों की संख्या कम होती चली जाती है, तो जो कम होते होते आधी हो जाएगी उसको हम कहेंगे गुणहानि। 128 से लेकर वो 64 हो जाएगी, फिर 32 हो जाएगी और इधर भी 64, 32, 16, इस तरह से दोनों ओर टेपरिंग हो जाएगी, उसको कहेंगे हम गुणहानि। तो यहाँ भी कुछ गुणहानि है और यहाँ भी गुणहानि है, सबकी टोटल 1422 आएगी। देखो इससे वो कर्मकांड में से हमने पढ़ा था वो आसान हो जाएगा, जरा नीचे निकाल के रखा है दो भाग, दूसरा पूर्वार्ध एक ब्लू है और एक ब्राउन है। पृष्ठ पर निकालना, एसी को समझाया। सम्यक ज्ञान चंद्रिका में बहुत आसान बताया है। इसका भावार्थ से ऊपर से पढ़ते हैं, 260 पृष्ठ पर गाथा के नीचे जो भावार्थ लिखा है उससे पढ़ते हैं। जैसे यव नामा अन्न, यव कहो या गहू, देखो ना बीच में मोटा है और दोनों ओर टेपरिंग है, तो यव नामा अन्न बीच में मोटा हो है और ऊपर ही नीचे क्रमतः घटता घटता हो है, ऊपर की ओर और नीचे की ओर वो घटता जाता है, तैसे उस प्रकार त्रस पर्याप्त संबंधी परिणाम योगस्थान। हमने तीन प्रकार के योगस्थान देखे थे ना अभी अभी, उपपाद योगस्थान, एकांक वृद्धि वाले योगस्थान और परिणाम योगस्थान। तो ये जो परिणाम योगस्थान है, परिणाम योगस्थानकनी विषय ने परिणाम योगस्थान के बारे में यव आकार में जो बीची का स्थानक है तहाँ जीवनी का प्रमाण बहुत है, वहाँ जीवों का प्रमाण बहुत है। बीची का स्थानक के धारक जीव बहुत है, ये ढूंढारी भाषा है मूल ओरिजिनली टोडरमल जी की। इस बीची के स्थानक ते ऊपरी के स्थानकनी विषय, यानी उस बीच के स्थानक से ऊपर के स्थानों में वा यानी और नीचे के स्थानों में अनुक्रम से जीवनी का प्रमाण घटता घटता है। अभी हमने देखा था ना बीच में मेजॉरिटी जीव मैक्सिमम है और दोनों ओर जीवों की संख्या घटती चली जाती है। तीन स्थानकनी के धारक जीव अनुक्रमतः घटते घटते पाइए है, ऐसे यह यव आकार रचना है, इसी को कहते हैं जीव यव मध्य रचना। तहां निचली गुणहानि शलाका तई ऊपरी की गुणहानि शलाका का प्रमाण किचु अधिक है। यह हमने देखा ना ये 64 हो गए, 32 हो गए, 16 हो गए, तो मान लेते नीचे तीन गुणहानि है तो ऊपर 5 हो जाएगी, 64 है 32 है फिर 16 हो जाएगी फिर 8 हो जाएगी 4 हो जाएगी, इस तरह से। तो नीचे की गुणहानि कम है, ऊपर के नंबर ऑफ गुणानी ज्यादा। सोई कहिए नहीं, इसको अभी समझाते हैं, इसको काल्पनिक संख्या लेकर ही समझाएंगे। अभी ये गाथा के नीचे पढ़ते हैं टीका में, यव के आकार जीव की संख्या की रचना विषय प्रथम अंकनी की सहनानी करी कथन दिखाइए है। अंकों की सहनानी ने अंकों के चिन्ह बता रहे हैं, ये काल्पनिक संख्याएं बता रहे। तहां द्रव्य तो त्रस पर्याप्त जीवनी का प्रमाण, द्रव्य ने टोटल जीवों की संख्या, यहां द्रव्य का अर्थ होता है टोटल संख्या, 1422 है। और स्थिति त्रस पर्याप्त जीव संबंधी परिणाम योगस्थानी का प्रमाण 1322। ये द्रव्य स्थिति नाना गुणहानि ये सब ये गणित के शब्द हैं, अलग अलग गणितों में ये सेम शब्द आते हैं, यहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में आए हैं उसको ये बता रहे हैं। द्रव्य यहाँ जीवों की संख्या को कहना, ये हमने 1, 2, 3, 4 योग स्थान जो अलग अलग बताए हैं उसको कहेंगे स्थिति। तो उसका प्रमाण यहाँ 32 बताया है। यानी ये अलग अलग योग स्थान कितने हैं, तो 32 है। इन 32 योग स्थानों में जीव कितने हैं, तो 1422। तो कहाँ कितने जीव है वो अभी बताएंगे। बहुरी गुणहानी आयाम, जो एक गुणहानी विषय, तीन स्थानकनी का प्रमाण, सो चार। अब कहते हैं यहाँ गुणहानी कितनी है, तो चार गुणहानी, यानी जहाँ जीवों की संख्या आधी होती है, कितने स्थान जाने पर आधी होती है, तो चार चार, तो चार स्थानों की एक गुणहानी होगी। तो स्थान टोटल हमने कितने देखे, 32, तो टोटल गुणहानि कितनी होगी, 8 होगी। तो सेंटर की एक हम कॉमन रखेंगे, तो दोनों ओर यहाँ 3 हो जाएगी और ऊपर 5 हो जाएगी, इस तरह से 8 हो जाएगी। बहुरी ऐसी सर्व गुणहानि 8, टोटल नंबर ऑफ गुणहानि को कहते हैं नाना गुणहानि, तो नाना गुणहानि कही है। कहाँ, निचली नाना गुणहानि का प्रमाण 3। निचली ने हमने एक सेंटर से पॉइंट शुरू किया था, नीचे की ओर 3 है, तो ऊपर की ओर 5 हो जाएगी, ऊपर की गुणहानि का प्रमाण 5। ऐसे 8 नाना गुणहानि जानने। अब एक संख्या और होती है कि अन्योन्य अभ्यस्त राशि, वो कैसे निकालते हैं, तो जितनी नाना गुणहानि है उतनी बार दो संख्या लिखते हैं और आपस में गुणा करते हैं, तो उसको कहते हैं अन्योन्य अभ्यस्त राशि। तो यहाँ कितनी है नाना गुणहानि, तो 8 है, परंतु उसमें नीचे की 3 है और ऊपर की 5 है, ये 3 है और 5 है, तो यहाँ 3 बार 2 लिखेंगे और आगे है वो 5 बार 2 लिखेंगे, तो इनकी और इनकी संख्या अलग अलग आ जाएगी, तो इनकी संख्या 8 आ जाएगी, और ये 2 × 2 × 2 जो है, हाँ, 1432 ही आ जाएगी। देखो यहाँ लिखी है निचली अन्योन्य अभ्यस्त राशि का प्रमाण 8 और ऊपरी की अन्योन्य अभ्यस्त राशि का प्रमाण 32, ऐसे सर्व 40 है, इनके टोटल करना है, 40 आ जाएगी अन्योन्य अभ्यस्त राशि, इतनी आ जाएगी। ये तो बेसिक डेटा हो गया, अभी इस पर से वो गणित समझाएंगे। यहाँ त्रिगुणी गुणहानि किचु घाटी का भाग, ये गुणहानि, एक गुणहानि 4 है, उसको तिगुना करेंगे तो 12 हो जाएगी, उसमें से कुछ कम करना, और उस कुछ कम का भाग पूरे द्रव्य को है, हमने कितना देखा था, 1422, तो 1422 को 12 में से कुछ कम का भाग देंगे तो 128 आ जाएगी। ये कुछ कम का भाग भी उन्होंने बताया, तिगुणी गुणहानि 12 होती है ना, 12 में से 57/64 कम करना, ये कुछ कम का उसका प्रमाण दिया है। एक्चुअल में ये सारा असंख्यात में गणित चलता है, परंतु यहाँ समझाने के लिए काल्पनिक फिगर लिए है, इसलिए कुछ कम इतना बता दिया उन्होंने, इसके हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आगे की संख्या जीवों की कैसी निकालनी है उसके यहाँ प्रकरण चल रहा है, ये सभी प्रकरणों में डिफिकल्ट प्रकरण चल रहा है। तो जिग्नेश भाई तो घबरा के भाग जाएंगे। हाँ। हम ये सब देखो डायरेक्ट निकालेंगे, 128 आ जाएगा, यानी मध्य में 128 जीव है, ऐसा आ गया, मध्य में 128 जीव है। अब दोनों ओर वो कम हो जाएंगे, हर स्थान में थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे, ये थोड़ा कम जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम कहते हैं क्षय, उसी का दूसरा नाम है विशेष। तो एक सौ, हाँ, तो विशेष कैसा निकालना, उसका प्रमाण कैसे निकालना, तो नीचे से वो तीसरे पैराग्राफ में देखो, विशेष का प्रमाण कितना है, अपनी अपनी गुणहानि का पहला निषेक को, दूना गुणहानि का आयाम प्रमाण जो दो गुणहानि ताका भाग दिए जो प्रमाण होई, अभी इसके नीचे पढ़ेंगे हम, सोई दिखाई है ना, वहां से पढ़ेंगे। देखो अभी हमने बीच में 128 निश्चित किया था, हमको दोनों ओर टेपरिंग चाहिए, तो कैसे निकालना है? ऊपर की पांच गुणहानी हमने देखा ना, 4000 का हमने एक एक देखा था। तीन विषय, पहली गुणहानि का पहला निषेक का प्रमाण 128, ये 128 है। अभी हम ऐसा लिखेंगे, ऐसे ऊपर भी टेपरिंग होगा और नीचे भी टेपरिंग होगा, तो चार बार हो जाएगा, तो 128 का 64 हो जाने वाला है, क्योंकि चार की एक गुणहानि है, ऐसे पांच बार वो आधा आधा होने वाला है और नीचे तीन बार आधा आधा होने वाला है। तो ये कैसे निकालना? तो ये पहला जो 128, उसको दो गुणहानि जो 8 है उसका भाग देना तो 16 आता है, तो 16 ये यहाँ का कॉमन डिफरेंस होगा। तो हर एक में से 16 कम करते जाएंगे तो ये ऊपर की ओर, हम इसमें से 16 का 128 में से 16 कम हो गए, कितने हो जाएंगे देखो, 128 112, फिर 196, 16 × 5 = 85, इस तरह से 64, इस तरह से कम होता जाएगा।
64 लेना तो ये चार कम हो गए ना,
हाँ चार कम हो गए तो 64 हो गए, एक बार दो बार तीन बार चार बार कम हो गए तो 64 हो गए, तो आधी हो गई ना वहाँ पर, इस तरह से उसको लेना है। तो देखो ये तो इसको कहते हैं विशेष का प्रमाण 16। सो एक एक निषेक, ये जो एक एक योग स्थान है उसको एक एक निषेक कहा हमने, एक एक निषेक विषय 16 घटावना, अंत का निषेक विषय यानी उसमें अभी 128 112 96 80 ऐसे आ गए, फिर यहाँ से दूसरी गुणहानि चालू हो जाएगी, गुणहानि होती है ना आधे हो जाएगी 64, फिर 64, फिर 48, इस तरह से ऊपर ऊपर कमती हो जाएगी, नीचे भी उसी मात्रा में कम हो जाए, क्योंकि दोनों ओर टेपरिंग है, ऊपर भी और नीचे भी, छह भी आधा हो जाए।
चार बार जावे तो 32 हो गए,
64 में से अभी 32 होगा, वो भी चार बार आधा आधा हो जाएगा ना, अभी उसमें यहाँ 16 डिफरेंस था, दूसरी गुणहानि में डिफरेंस भी आधा हो जाएगा, 8 डिफरेंस होगा, फिर आगे वो डिफरेंस 4 हो जाएगा, फिर आगे वो डिफरेंस 2 हो जाएगा, इस तरह से दोनों और कम हो जाते हैं। हम इसके डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम ओरिजिनल पुस्तक पर आते हैं। इसका जो टोटल आपको देखना है ना, वो पेज नंबर 264 पर देखना,
264
ये कर्मकांड में 264 पृष्ठ पर देखिए, सेंटर में 128 नंबर दिख रहा है, उसके ऊपर 112 96 80 होते हैं, फिर 64 आता है, वहां से दूसरी गुणहानि चालू हो जाएगी, वहां ऊपर वो घटते चला जाता है, ये डिफरेंस भी आधा हो जाएगा। देखिए ऊपर से जो पहला कॉलम है उसमें नाम लिखा है, दूसरे में विशेष यानी चय का प्रमाण, विशेष का प्रमाण, विशेष का प्रमाण जहां हमने 128 से शुरू किया था वहां 16 था, ऊपर 8 हुआ, 4 हुआ, 2 हुआ, फिर 1 हुआ, नीचे की ओर भी 16 का पहले 16 ही रहा और फिर 8 हुआ, 4 हुआ, और उसकी टोटल जो है बीच वाले 416 है, फिर 208 हो जाती है, ये जीवों की संख्या है राइट साइड के कॉलम में, ऊपर 104, 52 और 26 टोटल, यानी जो चार चार जो अलग अलग है ना उसकी टोटल की है। अब ऊपर से नीचे तक की सभी जो संख्या है इसकी टोटल करेंगे तो 1422 आएगी, हमें टोटल जीवों की संख्या बताई थी उन्होंने। अब यही जो नीचे है उसको कहते हैं नीचे वाली गुणहानि और ये ऊपर वाली गुणहानि, अब इसका ये धवला में पढ़ेंगे अभी, तो बहुत शॉर्ट में लिया आपने, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो ये सबक के सामने पुस्तक नहीं है, समझने में कठिनाई होगी। अभी हम धवला में 63 पृष्ठ पर पढ़ते हैं, उदाहरणार्थ से पहली लाइन से फिर देखते हैं, उदाहरणार्थ अंक संदृष्टि की अपेक्षा, देखिए यहाँ लिखा है अंक संदृष्टि, और यथार्थ में जो असंख्या जगत श्रेणी वगैरह जो फिगर्स थे ना उसको कहते हैं अर्थ संदृष्टि। टोडरमल जी ने अर्थ संदृष्टि के अलग वॉल्यूम्स लिखे, जैसे अभी एक यहाँ तो कर्म कांड है, उसके पहले जीव कांड हमने देखा था, फिर लब्धि सार क्षपणा सार, हर एक के गणित अलग अलग वॉल्यूम में उन्होंने बताए, वहाँ ऐसे सब एक्चुअल फिगर्स बताए, यहाँ हम जो ले रहे वो काल्पनिक फिगर्स हैं। अभी कर्मकांड में तो काल्पनिक फिगर्स लिए कर बताए हैं, और उसकी जो अर्थ संदृष्टि है उसमें एक्चुअल जो असंख्यात वगैरह है उसकी गणित लेके बताए। तो यहाँ अंक संदृष्टिया ने काल्पनिक जो छोटी फिगर्स समझाने के लिए ली है उसको अंक संदृष्टि कहते हैं। उदाहरणार्थ अंक संदृष्टि की अपेक्षा तीन जीव गुणहानियों का काल 12 है, हमने एक का काल 4 देखा था तो 3 का 12 हो जाता है, और त्रस पर्याप्त राशि का प्रमाण 1422 है, ये भी हमने मान लिया है। अतः इस राशि में कुछ कम 12 का अर्थात 711/64 यानी ये है 11.764 कुछ कम लिया ना, 12 में कुछ कम लिया, इसका भाग देने पर यव मध्य के जीवों का प्रमाण 128 होता है, जो अभी हमने उस टेबल में दिखा था, जो अर्थ संदृष्टि की अपेक्षा असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। ये अर्थ संदृष्टि शब्द आया ना, यानी यथार्थ में एक्चुअल में कितने है वो संख्या सेंटर में मैक्सिमम, तो असंख्यात जगत श्रेणी। यहाँ यद्यपि मूल में तीन गुणहानियों के काल का भाग दिला गया है, पर वह स्थूल कथन है, 12 से भाग दिया वो स्थूल कथन है। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर कुछ कम तीन गुणहानियों के काल का भाग दिलाने पर ही यह संख्या प्राप्त होती है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। इस प्रकार जबकि तस् पर्याप्त राशि में कुछ कम तीन गुणहानियों के काल का भाग देने पर यव मध्य के जीवों का प्रमाण आता है, हमने देखा था ना अभी 128 निकाला हमने, 1422 को कुछ कम 12 से भाग दिया तो 128 आए, तो यव मध्य के जीवों का प्रमाण आता है। यव मध्य क्यों कहा, मेजॉरिटी है ना वहाँ पर ज़्यादा संख्या, इसलिए यव मध्य कहा। तो उस राशि को यव मध्य के जीवों के प्रमाण रूप से करने पर वह कुछ कम तीन गुणहानियों की जितना संख्या होगी उतने यव मध्य प्रमाण प्राप्त होगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं। अब यह देखना है इस राशि में से जघन्य योग स्थान को प्राप्त कितने जीव है, हमारे क्या देखना था जघन्य योग स्थान में कितने जीव है, सबसे बीच में 128 है, उन सबसे नीचे कितने जीव है, जघन्य देखा था हमने, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक हमने 32 योग स्थान देखे, बीच में कहीं तो ये 128 जीव है, तो ये पहले स्थान में कितने जीव होंगे उसकी संख्या हमको निकालनी। इसके लिए यह नियम है कि अधस्तन गुणहानी, अधस्तन नीचे की, अधस्तन गुणहानियों की अन्योन्य अभ्यस्त राशि से, हमने अन्योन्य अभ्यस्त राशि कैसे निकाली थी, हाँ तीन गुणहानियाँ हैं 2×2×2 तो 8 आ गई, अन्योन्य अभ्यस्त राशि से कुछ कम तीन गुणहानियों के काल को गुणित करने पर जो लब्ध आवे उसका समस्त त्रस पर्याप्त राशि में भाग देने पर जघन्य योग स्थान के जीवों का प्रमाण आता है, ये उन्होंने नियम बता दिया।
उदाहरण
काल, इसको काल कहना कि कितने स्थान जाने पर आधा होता है उसको काल कहना, यहाँ काल यानी समयों की बात नहीं है, आयाम जिसको कहते हैं, गुणहानि का आयाम कहते हैं ना,
अब
हाँ अब ये उदाहरण करके बताएंगे। उदाहरणार्थ अधस्तन गुनाहानियों की अन्योन्य अभ्यस्त राशि 8 है, 2 × 2 × 2 निकाले थे हमने, इससे कुछ कम 3 गुनाहानियों के काल 11.7/64 को गुणित करने पर 88.7/8 प्राप्त होते हैं और इसका सब त्रस पर्याप्त राशि 1422 में भाग देने पर 16 प्राप्त होते हैं, जो सबसे जघन्य त्रस पर्याप्त योग स्थान वाले जीवों का प्रमाण है। हमने देखा था ना, ये 128, 64 हो गए, 32 हो गए, ये 2 गुनानी होगी और 1 गुनानी होगी तो 16 आ जाएगी, तो उसका प्रमाण 16 आ जाएगा। सबसे उत्कृष्ट त्रस पर्याप्त योग स्थान वाले जीवों का प्रमाण भी इसी प्रकार ले आना चाहिए। इसी प्रकार यानी वहाँ गुनाहानी कितनी है, 5 है, 5 बार आधा आधा हो जाएगा ना, यानी 64 होगा, फिर 32 होगा, 16 होगा, 8 होगा और 4 होगा, तो 5 गुनाहानी है, तो 5 बार 2, 2, 2 को आपस में गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगी, तो 32 गुना वो, जैसे यहाँ हमने इसको गुणा किया था 8 का अन्योन्य अभ्यस्त राशि से गुणा किया था, वैसे वहां भी करना। अतः यह राशि असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण है, क्योंकि जगत प्रतर में जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग का भाग देने पर यह राशि आती है। अतः संपूर्ण त्रस पर्याप्त राशि असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण है, यह अपने आप सिद्ध हो जाता है। इसी को उन्होंने कर्मकांड का ही उदाहरण देके, ये उद्धरण देके बताया। इस प्रकार प्ररूपणा समाप्त हुई। अब देखो यहाँ पेज नंबर फिर निकालना, 61 पर हमने देखे थे, ये 6 बातें बताने वाले हैं, ऊपर से चौथी लाइन में उन्होंने बताया था प्ररूपणा ने सभी योग स्थानों में जीव है ये सिद्ध किया, प्रमाण उन्होंने बताया। दूसरी बात, अब श्रेणी अवहार भागाभाग और अल्पभूतों कहेंगे, तो अब देखते हम श्रेणी की बात यहाँ बता रहे हैं। श्रेणी प्ररूपणायने, प्ररूपणायने कथन उसका 2 प्रकार की है, अनंतरोपनिधा और परम्परोपनिधा। उनमें से अनंतरोपनिधा को कहते हैं, वह इस प्रकार है, पल्योपम के असंख्यात्वे भाग प्रमाण जीव गुणहानी शलाकाओं का क्या कहते हैं। देखो ये हमने तो अभी समझाने के लिए कितनी जीव गुणहानी शलाका देखी, नीचे 3 और ऊपर 5, एक्चुअल में कितने हैं, पल्य के असंख्यात्वे भाग जो असंख्यात है, इतनी गुणहानियाँ होती है तो कितने हो गए टोटल योग स्थान, कितने हो गए ना, तो पल्योपम के असंख्यात्वे भाग प्रमाण जीव गुणहानि शलाकां का त्रैराशिक क्रम से समस्त योगस्थान अध्वान में भाग देने पर, योगस्थान अध्वान अध्वान ने काल, हमने देखा था ना काल, यानी यहाँ काल एक्चुअली समयों की नहीं है, कितने योगस्थान हैं उसको हमने योगस्थान अध्वान कहा। भाग देने पर एक आयाम गुणहानी आती है, यानी एक गुणहानी आयाम आता है। अपने एग्जाम्पल में हमने समस्त गुण योगस्थान कितने देखे थे, 32, और वहां टोटल गुणहानियां कितनी थी, 8, उसका भाग देने पर 4 आए थे, यानी एक गुणहानी का आयाम आया था। वही बात यहाँ बता रहे हैं, जितने समस्त योगस्थान है कितने हैं तो उसको हमने जीव गुणहानी शलाकाओं कहने, पल्ले के असंख्यातवे भाग से भाग दें तो एक गुणहानी का आयाम आ जाएगा, उसका विरलन कर। देखो विरलन करना यानी किस क्या करना, ये गणित की भाषा है ना, कोई 4 संख्या है तो कहेंगे 4 का विरलन करो, तो एक एक संख्या कितनी होती है उसके विरलन करना यानी उसको बिखेर देना, 4 को हमने एक एक में बिखेर दिया तो ऐसे आया, इसको कहते विरलंकर। अब जो एक राशि आती है उसका नाम है देय राशि, जो अलग अलग हो सकती है, तो उसमें कहेंगे हर एक के ऊपर अमुक अमुक राशि लिख देना, तो हम वो देय राशि लिखेंगे। मान लेते हैं हम हर एक के ऊपर चार लिखेंगे और फिर आपस में गुणा करेंगे, तो इसको कहते हैं विरलन करना, देय करना और फिर उसका गुणा करना। अब यहाँ बताते हैं क्या करना है। पहले में पहले यहाँ उसका विरलन कर प्रत्येक एक पर जघन्य योग स्थान के जीवों को समखंड कर देने पर प्रत्येक एक के प्रति जीव प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। अब ये उदाहरण करके उन्होंने वो आसान करके काल्पनिक संख्या में पहले बताया। जीव गुणहानि शलाका 8, हमने देखी थी नीचे 3 ऊपर 5 है। सब योग स्थानों का काल 32 है। योग स्थानों का काल का अर्थ होता है योग स्थान कितने हैं। जगन्य योग फिर थोड़ा ज्यादा, योग फिर थोड़ा ज्यादा, इस तरह से 32 हमने मान लिए ना, अभी 32 है। जगन्य योग स्थान के जीव 16 जो अभी हमने निकाले थे, तो 32/8=4, एक गुणहानि का काल, क्योंकि 32 टोटल योग स्थान है, तो उसको हमने जीव गुणहानि शला का टोटल नाना गुणहानि 8 है उसका भाग दिया था, तो एक गुणहानि का काल आएगा 4। अब ये प्रक्षेप का प्रमाण निकालना है, तो हमने देखा था ये 4 को विरलन कर दो, यानी एक 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 लिख दो और हर एक के ऊपर जघन्य योग स्थान यानी 16 जो है उसको समखंड करना है। समखंड करना है, अभी 4 में 16 को विभाजित कर दो। हमने पहले क्या लिखा, ये विरलन किया, अभी 16 संख्या सब में बांटनी है इक्वली, तो 4 4 4 लिखने पड़ेंगे, तो ये 4 उसका समखंड हुआ, तो ये समखंड हुआ, तो इसको कहते हैं जीव प्रक्षेप का प्रमाण। प्रक्षेप यानी एडिशन, कितने कितने हमें अधिक अधिक करते जाएंगे उसको कहते हैं प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त हुआ। अब यहाँ जीव प्रक्षेप के प्रमाण का विचार करते हैं, वह इस प्रकार है। यव मध्य से पहले की नाना गुणा निशलाकों की अन्योन्य अभ्यस्त राशि से 3 गुणहानियों को गुणित करने पर योग स्थान के काल से असंख्यात गुणा प्राप्त होता है, फिर उसका त्रस पर्याप्त राशि में भाग देने पर असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जघन्य योग स्थान के जीव आते हैं, जो हमने 16 निकाले थे जघन्य योग स्थान के जीव। उन श्रेणियों की विष्कम्भ सूची जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। देखो विष्कम्भ सूची किसको कहना, हमने कहा ना असंख्यात जगत श्रेणी है, तो ये असंख्यात का प्रमाण क्या है उसको कहते हैं उसकी विष्कम्भ सूची। जगत श्रेणी किसको कहना, देखो जैसे हमने ये 16 गुना 16, या अभी छोटी संख्या लिखेंगे 4 गुना 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो ये एक है, ऐसे हमने 4 बार लिखेंगे 4 4 4 4, तो 4 गुना 4 16 आ जाते हैं। तो अगर हम 4 को लेंगे और ये 16 से कुछ कम संख्या होगी तो हम कहेंगे ना 4 को कितनी बार करेंगे, तो यहाँ कहते हैं ये जगत श्रेणी है तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जगत प्रतर आता है, परंतु इसको किसी अन्य असंख्यात से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी संख्या कितनी है, इसको कहते हैं विष्कम्भ, विष्कम्भ सूची कहते हैं उसको। तो ये विष्कम्भ सूची कितनी है, यानी कौन से असंख्यात से उसको गुणा करना है, उसका यहाँ वो समाधान करते देखो। उदाहरण कर देके समझाएंगे। अधस्तन नाना गुणहानि शलाका 3, उसकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि 3 बार 2 2 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगी। 3 गुणहानियों का काल 12, और त्रस पर्याप्त राशि 1422। तो पहले हमने ये जो अन्य अन्य अभ्यस्त राशि को 3 गुनाहने से गुणा किया था तो 96 है ना, 12×96 कुछ कम किया और उसका भाग 1422 में देने पर जघन्य योग स्थानों के जीवों का प्रमाण 16 प्राप्त हुआ, जो उन्होंने पहले निकाल के दिखाया था। यह कैसे जाना जाता है उसका समाधान, क्योंकि योग स्थान संबंधी काल के लाने के लिए निमित्तभूत जो जगत श्रेणी का भागहार है वह जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग पाया जाता है। वह भी किस प्रमाण से जाना जाता है, समाधान, क्योंकि सब योग स्थानों को जघन्य योग स्थान के जघन्य स्पर्धकों के प्रमाण रूप से करके उसमें एक स्पर्धक की श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण वर्गणा शलाकाओं से सब योग स्थानों को गुणित करने पर श्रेणी के असंख्यात विभाग मात्र ही वर्गणाएं प्राप्त होती है, इस गुरु के उपदेश से जाना जाता है। अभी इसमें सारे शब्द नए हैं, उसमें एक शब्द आया ये योग स्थान क्या है और उसमें जघन्य स्पर्धक क्या है, उसमें वर्गणा क्या है वगैरह वगैरह, तो उसको थोड़ा हम देखते हैं। एक योग स्थान जब कहते हैं तो ये वर्ग वर्गणा स्पर्धक वगैरह हमने कर्मों में भी देखे थे। कर्मों में तो अनुभाग की अपेक्षा वर्णन करते हैं, तो जहां कोई अनुभाग है वहां कर्मों में तो कर्म का फल देने का अनुभाग था और वो कर्म का फल देने का अनुभाग युक्त परमाणुओं को वर्ग कहा था। यहां अपनी बात योगों की चल रही है, तो योग किस में होता है, तो आत्म प्रदेशों में होता है, तो एक एक आत्म प्रदेश को एक एक वर्ग कहेंगे। उसमें विशिष्ट योग शक्ति है ना, तो उसका विशिष्ट अविभाग प्रतिच्छेद वाला जो योग है उसको धारण करने वाला जो एक एक आत्म प्रदेश है उसको आत्म प्रदेश को वर्ग कहेंगे। जिन जिन आत्म प्रदेशों में समान योग है उसको वर्गणा कहेंगे। तो इतने अमुक इतने नंबर ऑफ वर्ग वो असंख्यात जगत प्रतर हो गए, सब आत्म प्रदेश कितने हैं, तो एक लोक इतने हैं। और ये जो मैक्सिमम जिसमें है योग, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ परमाणु जिसमें समान योग है, इसमें योग तो है जगन्य, तो उसको हमने वर्गणा कहा। कितने वो भूल जाओ अभी, इसको वर्गों के समूह को हमने वर्गणा कहा। ऐसे कितने ही दूसरे नंबर ऑफ वर्ग यानी प्रदेश है आत्मा के कि जिनमें योग और जरा ज्यादा है, और कुछ आत्मा के प्रदेश है परंतु वो प्रदेशों की संख्या थोड़ी कम है, जिसमें जघन्य योग है उनकी संख्या ज्यादा है, जिसमें योग ज्यादा है उन प्रदेशों की संख्या कम है, और कुछ ज्यादा योग है उनके प्रदेशों की संख्या और कम है। एक ही आत्मा की बात चल रही है, और कुछ ज्यादा योग है ऐसे आत्म प्रदेशों की संख्या कम है, इस तरह से यहाँ तो योग ज्यादा 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 है, तो इस तरह से यहाँ जो यहाँ जितना योग है उससे डबल योग हो जाता है, वहां तक के सभी एक वर्गणा दूसरी वर्गणा तीसरी वर्गणा चौथे वर्गणा, इसको स्पर्धक कहते हैं। फिर दूसरा स्पर्धक, ये योग यहाँ डबल हो जाए यहाँ से दूसरा स्पर्धक, ये स्पर्धक नंबर 2, तीसरा स्पर्धक, चौथा स्पर्धक। अब यहाँ प्रदेशों की संख्या कम होती जा रही है, तो जहाँ प्रदेश आधे हो जाएंगे वहां तक जितने स्पर्धक हैं उन सबको मिलकर हम गुणहानि कहेंगे, इसको प्रदेश गुणहानि है ना, वो प्रदेशों की गुणहानि चल रही है। शब्द तो वही के वही आए थे, हाँ गुणहानि शब्द सब जगह होगा, वर्ग वर्गणा स्पर्धक गुणहानि शब्द तो सब जगह वही हो गए, परंतु वो किस बारे में चल रही है, वो कर्मों की बात है कि प्रदेशों की और योगों की बात है। यहाँ एक एक प्रदेश को एक एक वर्ग कहा, जिसमें मिनिमम योग है उसको पहली वर्गणा कहा, फिर आधे आधे होते 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 जहाँ आधे हो जाते, प्रदेशों की संख्या आधी होती है, वहाँ तक कहेंगे एक गुणहानि। परंतु बीच में जहाँ अनुभाग डबल हो जाता है उसको कहेंगे स्पर्धा। तो ऐसे वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक और अनेक स्पर्धों की एक गुणहानि, और ऐसे ज़्यादा गुणहानि होती है उसको कहते हैं नाना गुणहानि। ऐसे सब मिलकर ये एक योग स्थान हुआ, एक जीव का जो योग है उसको कहते हैं योग स्थान। स्थान क्यों कहा? क्योंकि अलग अलग जीवों में अलग अलग योग पाए जाते हैं, तो इसको वो जो भेद है उसका, उसको कहते हैं स्थान। तो किसी जीव में ये एक योग स्थान है, किसी में और ज़्यादा योग है, किसी में और ज़्यादा है, किसी में और ज़्यादा है, उसको अलग अलग योग स्थान कहेंगे। अलग अलग समयों में, एक समय में कोई एक योग है, परंतु उनके प्रदेशों में योग अलग अलग है। फिर भी जो मेजॉरिटी है उसको हम उस जीव का योग स्थान कौन सा है, उसका जघन्य योग स्थान ऐसा कहेंगे। असंख्यात प्रदेशों में, अभी देखे ना ये प्रदेश, एक जीव के ये प्रदेश है एट ए टाइम, सब मिलकर सभी प्रदेशों की संख्या मिलकर एक लोक प्रमाण होती है, परंतु इसमें मेजॉरिटी है, तो ये पूरा मिलकर एक योग स्थान हुआ। आगे के योग स्थान में क्या होता है, यहाँ योग ज्यादा है, एक जीव के एक समय की बात है, एक सभी प्रदेशों में अलग अलग, परंतु ये पूरा मिलकर एक योग स्थान है। ऐसे कोई अलग जीव में या उसी जीव को अन्य समयों में अलग योग स्थान होगा, यानी योग स्थान उसके योग बढ़ेगा, योग बढ़ेगा नहीं, सभी प्रदेशों में थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, उसके भी वो अलग रूल्स के होते हैं, कब कम ज़्यादा होता है, समयोग कब होता है, कौन से प्रदेशों में होता है उसकी बात नहीं, इतने नंबर ऑफ प्रदेशों में इतनी होती है, इसी बात। अब यहाँ क्या समाधान अभी हम फिर पढ़ेंगे 64 पृष्ठ पर नीचे से दूसरी लाइन। सब योग स्थानों को, ये एक योग स्थान इतना हुआ, ऐसे दूसरे योग स्थान, तीसरा योग स्थान, आगे के योग स्थानों में ये जघन्य वर्गणा के जो योग है उसकी, उसके शक्ति ज्यादा है आगे आगे वालों में। तो ये जघन्य योग स्थान की ये जघन्य वर्गणा, तो यहाँ क्या कहते देखो, सब योग स्थानों को जघन्य योग स्थान के जघन्य स्पर्धकों के प्रमाण रूप से करके, ये जघन्य स्पर्धक यानी ये सब पूरा स्पर्धक, ये जघन्य योग स्थान इसमें मिनिमम पॉसिबल योग है उसमें, ये पहला स्पर्धक यानी जघन्य स्पर्धक, इसमें जितना विभाग प्रतिच्छेद है, अभी इसका एक यूनिट बनाएंगे, उसके प्रमाण से करने पर यानी इसको एक यूनिट बनाएंगे और फिर सबको हम डिवाइड करेंगे, उस प्रमाण से करने पर उसमें एक स्पर्धक की श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण वर्गणा शलाकाओं से, क्या कहते हैं, हमने देखे थे ना एक स्पर्धक में बहुत सारी वर्गणाएं हैं, कितनी वर्गणाएं, जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण वर्गणाएं, तो उस वर्गणाओं से गुणित करने पर श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र ही वर्गणाएं प्राप्त होती है। इस गुरु के उपदेश से जाना जाता है कि योग स्थानों का काल लाने के लिए श्रेणी का भागहार जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण है। ये समाधान, चर्चा समाधान में हमें ज्यादा उलझना नहीं है, उसके लिए उन्होंने प्रूफ दिए। हमें इतना ही समझना है कि एक एक योग स्थान में इस तरह से रचना होती है, ये सभी नाना गुणहानि शलाका कितनी है तो पल्ले का असंख्यात भाग, एक एक गुणहानि में स्पर्धक कितने हैं तो जगत श्रेणी के असंख्यात भाग, एक एक स्पर्धक में वर्गणा कितनी है तो जगत श्रेणी के असंख्यात भाग, इतना ही अपने को लेना है। यहाँ सब योग स्थानों की वर्गणाओं के लाने का विधान कहते हैं, वह इस प्रकार है। एक कम योग स्थान के काल को समस्त योग स्थान के काल से गुणित करके, देखो काल यानी यहाँ समयों की बात नहीं है, नंबर ऑफ योग स्थान को यहाँ काल कहा है, आधा कर, फिर अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाओं से गुणित करके उसमें योग स्थान के काल से गुणित जघन्य योग स्थान की जघन्य स्पर्धक शलाकाओं का प्रक्षेप करने पर समस्त योग स्थानों की जघन्य स्पर्धक शलाकाएं होती है। तो यहाँ बाकी ये सारा आगे फिर विशेषार्थ करके समझाए ना, वो पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। तीन तीन विशेषार्थ, चार चार विशेषार्थ किए, तब विशेषार्थ ही विशेषार्थ है। जो त्रस पर्याप्तों के जो हमने योग स्थान देखे ना, उसकी बात चल रही ना अपनी यहाँ, उसमें हमने गुणहानि वगैरह लगाई। देखो एक एक योग स्थान में क्या क्या होता है, एक एक योग स्थान में नाना गुणहानि होती है, एक गुणहानि में नाना, एक एक गुणहानि में अनेक स्पर्धक है असंख्या, और एक एक स्पर्धक में सब वर्गणाएं। अब यहाँ कहते हैं कि सभी योग स्थानों की वर्गणाएं लानी है, तो क्या करना पड़ेगा? देखो एक योग स्थान में क्या होता है, एक योग स्थान में गुणहानि है, एक गुणहानि में स्पर्धक है, एक एक स्पर्धक में वर्गणाएं, सभी योग स्थानों की वर्गणाएं लानी है तो क्या करना पड़ेगा? सभी को हम लोग आपस में गुणा करना पड़ेगा, यही बात यहाँ बताई है। परंतु वो तो एक्चुअल फिगर्स हमारे ख्याल में नहीं आते, इसलिए वो बहुत गड़बड़ी लगती है। देखो पहले हम ये विशेषार्थ पढ़ेंगे, फिर इसको दोबारा पढ़ेंगे बाद में। 68. हाँ 67 पर है, 68 पर और फिर उसका विशेषार्थ का विशेषार्थ है। आगे चार पांच विशेषार्थ है, हमने बोला नहीं ये सबसे कठिन पार्ट है, और यहाँ पर आगे ये अपने कौन जिग्नेश भाई वो कहेंगे कि चाचा जी हमें कहाँ लेके आए आज। ऐसे आगे ये तो इसका विषय ऐसे आसान है। चलो अभी विशेषार्थ पहले पढ़ लेते हैं। अंक संदृष्टि की अपेक्षा उक्त विषय का खुलासा इस प्रकार है। गुणहानि का काल चार है, ये हमने पहले देखा था, आधे आधे होने के, चार बार करेंगे तो आधे होते जीवों की संख्या। इसका एक 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 इस प्रकार विरलन करके उस पर जघन्य योग स्थान के जीव 16 को विभक्त करना, 16 को समभाग रूप करके देना तो चार चार हो गए। चार 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 इस क्रम से स्थापित करने पर प्रत्येक विरलन के प्रति चार प्राप्त होते हैं। प्रथम प्रक्षेप का यही प्रमाण है। प्रक्षेप यानी चार चार बढ़ गए ना, हम अभी नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, प्रक्षेपण एडिशन, जैसे हमने 128 से आधा आधा होते देखा था, अब हम नीचे का सबसे पहला प्रमाण है 16, जघन्य योग स्थान का प्रमाण है 16, तो उसमें प्रक्षेप कितना चार चार का होगा, 16 के 20 हो गए, 20 के 24 हो गए, और 24 के 28 हो जाएंगे, इस तरह से बढ़ेंगे ना, 28 के 32 हो गए तो ये डबल हो गया, इसके आगे प्रक्षेप भी दुगुना हो जाएगा, जिसको हमने विशेष कहा था, चय कहा था। इसे 16 में मिलाने पर 20, यह दूसरे योग स्थान के जीवों की संख्या होती है। इसमें 4 मिलाने पर 24, यह तीसरे योग स्थान के जीवों की संख्या होती है। इस प्रकार जीवों की संख्या की दूनी वृद्धि होने तक यही क्रम जानना, 16 से 32 होने तक चार चार की ही वृद्धि होगी, 20 हुए, 24 हुए, 28 हुए, 32 हुए। अभी 16 के 32 होने के बाद अभी वृद्धि का प्रक्षेप का क्रम भी बढ़ेगा। फिर गुणहानि के काल का पूर्ववत विरलन करके उस पर अंत में प्राप्त 32 इस संख्या को विभक्त कर क्रम से स्थापित करना। अभी भी गुणहानि तो चार की है, तो चार को विरलन करेंगे तो एक 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 एक, और 32 को भी समखंड कर देना, तो हरे के 8 चौक 32 है ना, 8 8 8 8 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ प्रक्षेप का वैल्यू, प्रक्षेप की वैल्यू 8 हो गई। इससे द्वितीय प्रक्षेप का प्रमाण 8 उत्पन्न होता है। इस प्रकार यव मध्य के जीवों की संख्या 128 उत्पन्न होने तक यही क्रम जानना चाहिए। देखो यहाँ 8 का प्रक्षेप हुआ ना, तो 32 और 8 40 हुए, फिर 48 हुए, नहीं 48 हुए, 56 हुए और 64 हुए। तो 64 के बाद फिर अभी बढ़ेगा, अभी वो फिर विरलन करेंगे एक 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 एक, और 64 उसमें देना तो 16 16 देना पड़ेगा। अभी यहाँ का प्रक्षेप होगा 16, तभी 16 16 से बढ़ेगा, 64 प्लस 16 80 हो गए, 96 हो गए, फिर 112 हो गए और 128 तक यही क्रम होगा प्रक्षेप का। अतः यहाँ भागहार जगत श्रेणी का असंख्यात भाग अवस्थित रूप से सर्वत्र विवक्षित है, इसीलिए गुणहानि का काल भी अवस्थित रूप से ही लिया गया है, क्योंकि इन दोनों का परस्पर में संबंध है। अब जीव एवं मध्य के ऊपर के स्थान को कथन करने पर पूर्व भागहार से दुगुने भागहार का विरलन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा किए बिना यवमध्य का प्रक्षेप नहीं बन सकता। दुगुने भागहार का विरलन करने से अवस्थित भागहार की प्रतिज्ञा का विरोध होगा सो भी नहीं है, क्योंकि ये यव करना यय हुआ, यवमध्य के अब इसका फिर दोबारा ही विशेषा दिया। अधस्तन और उपरी भागों में पृथक पृथक अवस्थित रूप से दो भागहार स्वीकार किए गए हैं, ये जिसका विलयन करना है वो भागहार भी दोनों ओर अलग अलग है। इस प्रकार इन दूने भागहार का विरलन कर समखंड करके जीव यव मध्य के देने पर प्रत्येक एक के प्रति प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। फिर यवमध्य को प्रतिराशि कर उसमें से एक प्रक्षेप के कम करने पर उससे आगे के योग स्थान के जीवों का प्रमाण होता है। उसको प्रतिराशि कर उसमें से द्वितीय प्रक्षेप के कम करने पर उससे उपरिम योग स्थान के जीवों का प्रमाण होता है। इस प्रकार उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों का प्रमाण आने तक ले जाना चाहिए। ऊपर कम करते जाएंगे हम, माइनस करें, रिवर्स। देखो फिर विशेषा, पहले जो क्रम बतलाए हैं उससे जीव यव मध्य के आगे का क्रम बदल जाता है। पहले तो हम नीचे से जीव यव मध्य तक आ गए, वहां से आगे क्रम बदलता है। यहाँ भागहार का प्रमाण पूर्व की अपेक्षा धुना हो जाता है। जीव यव मध्य के पहले प्रत्येक योग स्थान के जीवों का प्रमाण लाने के लिए भागहार का प्रमाण जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण बतलाए थे, किंतु यहाँ वह दूना हो जाता है। अन्यथा यव मध्य के जीवों के आधार से आगे के प्रक्षेप का प्रमाण नहीं ला जा सकता। इस पर यह शंका होती है कि जब सर्वत्र अवस्थित भागार स्वीकार किया गया है, तब फिर यहाँ उसे दूना कैसे स्वीकार किया जाता है। उसका समाधान किया है, उसका भाव यह है कि यवमध्य से पूर्व की गुणहानियों में, यानी नीचे की, हमने नीचे तीन गुणहानि देखे ना, उसमें सर्वत्र एक भागहार स्वीकार किया गया है, और आगे की गुणहानियों में दूसरा भागहार स्वीकार किया गया है। इसलिए भागहार को अवस्थित, अवस्थित का अर्थ होता है वही उतना का उतना, नीचे के गुणानियों में वही का वही भाग आ रहा है और ऊपर अलग है परंतु वही का वही है। अवस्थित मानने में कोई बाधा नहीं आती, फिर भी यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि यव मध्य में सबसे अधिक जीव होते हैं, इसलिए यव मध्य के आगे की गुणहानियों में सर्वत्र प्रक्षेप को घटाते जाना चाहिए। यह नीचे से हमने देखा तो बढ़ाते गए, अब 128 तक आए तो अभी घटाते जाएंगे, और प्रत्येक गुणहानि में उसे आधा आधा करते जाना चाहिए। इस प्रकार उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों का प्रमाण आने तक यह क्रम जानना चाहिए। हाँ, देखो फाइनल आउटकम हम देखते हैं कि जो त्रस पर्याप्त राशि है द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, उनमें जो द्विंद्रियों में योग कम है और आगे आगे संगी पंचेंद्रियों में उत्कृष्ट योग, हम देखते हैं ना, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी देखा है कि वहाँ क्या लिखा है कि अरिहंत भगवान तो स्थित है एक जगह, कोई हलन चलन नहीं कर रहे हैं, समोचरण में स्थित है, और कोई द्विंद्रिय गमन कर रहा है, तो योग किसका ज़्यादा है? तो हम वो गमन करने वाले का योग दिखता है ना, तो वहाँ लिखा ये संगी पंचेंद्रिय इनका योग ज़्यादा है। तो संगी पंचेंद्रियों के अपने अपने योग स्थान, ये कुछ वेरिएशन है, तो उसमें भी ये उत्कृष्ट है। ऐसे द्विंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक के अलग अलग जीवों के या एक जीव के अलग अलग समयों में ये इतने सारे योग स्थान अलग अलग पाए जाते हैं। उसमें ऐसे कोई जो बीच वाला स्थान है कि वहाँ मैक्सिमम मेजॉरिटी जीव ज़्यादा है, तो दोनों ओर जीवों की संख्या कम होती जाती है। योग स्थान तो जो है वो तो क्रम से है, परंतु जीवों की संख्या उत्कृष्ट योग वाले पंचेंद्रिय जीवों की संख्या कम है, और ये जघन्य योग वाले जो द्विंद्रिय एकदम जघन्य वाले वो भी कम है, परंतु बीच वाले ऐसे कोई स्थान है कि वहाँ जीवों की संख्या ज़्यादा है। इसका प्रमाण कैसे निकालना, इसके लिए ये सारी चर्चा है। हाँ, वो तो एक्चुअली कितने संख्या आते वो असंख्यात में सारे होते हैं, तो उसके लिए सारा प्रमाण बताया गया है। एक्चुअली ये बात निकली कहाँ से सारी योगों की, यहाँ तो विषय चल रहा था कि कौन से जीवों में कितने कितने कर्म प्रदेश ज़्यादा है, इस पर से बात चली थी ना, उन जीवों का वर्णन चल रहा था, तो कौन से स्थान में कितनी बार रहा ऐसी बात आई थी, उसको समझाने के लिए सारा प्रकरण चल रहा था। हमने यहाँ देखा था ना, ये कौन सा जीव है, कितनी बार नरक में गया, कितनी बार एकेंद्रियों में गया, कि क्या, हाँ ये सब, हाँ गुणित कर्मांशिक और क्षपित कर्मांशिक, यानी जिसके सत्ता में कर्म कम है ऐसा जीव, और ऐसा जीव लेके जिसकी सत्ता में कर्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है उसको कहते हैं गुणित कर्मांशिक, और जिसकी सत्ता में कम है उसको कहते हैं क्षपित कर्मांशिक। तो गुणित वाले को ज़्यादा योग वाला जो जीव था, तो ज़्यादा योग वाले स्थान में वो ज़्यादा रहा ऐसा उसमें आया था, तो उसको समझाने के लिए बीच में ये प्रकरण लिया है। बाकी ये वेदना अधिकार, इसमें तो कर्मों की बात चल रही है इसमें, परंतु उसमें ये योग की अपेक्षा यहाँ प्रकरण हो रहा है, बाकी चर्चा हम कल करें। जावानी के